हरे कृष्णा। पिछले बीते हुए गुरुवार को 3 दिन पहले अष्टमी के तिथि पर एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी। एक उत्सव था जो गौड़ीय वैष्णवों के लिए बहुत प्रिय और महत्वपूर्ण है, परंतु उस दिवस पर उस उत्सव को हमने नहीं मनाया। समझिए कि आज मना रहे हैं, और वो है बहुलाष्टमी। आप में से कितने भक्तों ने इस उत्सव का नाम सुना है? बहुलाष्टमी, हाथ ऊपर कीजिए। बहुलाष्टमी, बहुलाष्टमी के दिवस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कुंड का जन्म या आविर्भाव हुआ। एक तालाब ब्रज में, वृंदावन में, जिसका नाम है राधा कुंड। तो राधा कुंड का हैप्पी बर्थडे था बहुलाष्टमी के उत्सव पर। राधा कुंड गौड़ी वैष्णवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका आविर्भाव कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के अष्टमी के तिथि पर हुआ। इस दिवस को बहुलाष्टमी कहते हैं, कृष्णाष्टमी भी कहते हैं। कृष्णाष्टमी शब्द जब प्रयोग हो जाता है बहुलाष्टमी के लिए, तो ये कृष्णाष्टमी में जो कृष्ण शब्द है वो भगवान कृष्ण को संबोधित नहीं करता है, परंतु कृष्ण मतलब अंधकार या काला, इसको संबोधित करता है। आप जानते हैं कि अमावस्या से पूर्णिमा तक जो पक्ष है उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं, क्योंकि धीरे धीरे से चांद का प्रकाश बढ़ते रहता है पूर्णिमा तक, और पूर्णिमा से फिर अमावस्या तक चांद की रोशनी का घटन होते रहता है, अंधकार बढ़ता है, इसलिए उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। कृष्ण मतलब काला, शुक्ल मतलब सफेद। तो कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष में जो अष्टमी है उस बहुलाष्टमी को भी कृष्णाष्टमी कहते हैं। तो इस कृष्णाष्टमी को हमें जन्माष्टमी से जोड़ना नहीं चाहिए, वो जन्माष्टमी है या गोकुलाष्टमी। वैसे राधा कुंड का नाम कम लोगों ने सुना है। ऐसे कई पावन सरोवर हैं जैसे मान सरोवर इत्यादि, जिनका नाम भारतवर्ष में शायद सभी लोगों ने सुना होगा, लेकिन राधा कुंड का नाम केवल उन लोगों ने शायद सुना है जो वृंदावन जाते हैं या जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये राधा कुंड एक ऐसा स्थान है जो कि सारे ब्रह्मांड में सबसे पावन जगह है। इसको समझना ये अति आवश्यक है। वैसे तो सारे वेदों में, इतिहासों में, पुराणों में भी राधा कुंड की चर्चा हुई है अलग अलग स्थानों पर, लेकिन श्रील रूप गोस्वामी, जो कि हमारे गौड़ी वैष्णव परंपरा में एक बड़े महत्वपूर्ण आचार्य हुए हैं, उन्होंने उपदेशामृत नामक ग्रंथ में राधा कुंड का वर्णन भी किया है। चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में जो आने वाले हैं उनको रूपानुग भी कहते हैं, क्योंकि वह रूप गोस्वामी के अनुयायी हैं, अनुगामी हैं। तो रूप गोस्वामी के ग्रंथ जो हैं वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक और महत्वपूर्ण है। तो श्रील रूप गोस्वामी इस उपदेशामृत ग्रंथ में कहते हैं कि राधा कुंड के महत्व को समझने के लिए हमें थोड़ा विचार करना चाहिए। अब ये संसार में इतने सारे सकाम कर्मी लोग हैं। सकाम कर्मी मतलब जो कर्म करते हैं कुछ भोग प्राप्त करने के लिए, कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए। ऐसे लाखों लाखों सकाम कर्मियों में से वो व्यक्ति श्रेष्ठ है जिसको थोड़ा बहुत जीवन के परम लक्ष्य के बारे में ज्ञान है, अपना श्रेय क्या है उसे मालूम है, और ऐसे जो ज्ञानी होते हैं जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान है, ऐसे हजारों हजारों ज्ञानियों में से सर्वश्रेष्ठ वो है जो कि मुक्ति की अवस्था के करीब पहुंच चुका है। मुक्ति की अवस्था के करीब पहुंचे हुए हजारों हजारों लोगों में से, ज्ञानियों में से वो श्रेष्ठ है जो मुक्त हो चुका है। हजारों हजारों मुक्त पुरुषों में से, ज्ञानियों में से वो श्रेष्ठ है जिसने कि भक्ति मार्ग को स्वीकार कर लिया है। हजारों हजारों ऐसे लोगों में से जिन्होंने कि भक्ति मार्ग को स्वीकार किया है, उनमें से वो श्रेष्ठ है जिसने कि शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिया है। हजारों हजारों शुद्ध भक्तों में से, कृष्ण प्रेमियों में से वृंदावन के गोपियां सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि सर्वदा वो श्री कृष्ण के ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहती हैं। और हजारों हजारों गोपियों में से सर्वश्रेष्ठ एक गोपी है जो कि श्रीमती राधा रानी है, क्योंकि वो श्री कृष्ण को अति प्रिय है। श्री कृष्ण का प्रेम श्रीमती राधा रानी के प्रति अतुल्य है। भगवान श्री कृष्ण के हृदय में जो श्रीमती राधा रानी के लिए भाव है वो और किसी के लिए भी नहीं है। और श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि जितना प्रिय श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के लिए हैं, उतना ही प्रिय ये राधा कुंड श्री कृष्ण के लिए है, क्योंकि ये कुंड श्रीमती राधा रानी का है। इसलिए रूप गोस्वामी बताते हैं कि कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो कि राधा कुंड के तट पर निवास करके अपने शरीर को भूलकर, अपने आध्यात्मिक शरीर का विकास करके, प्रकट करके अप्राकृत शुद्ध भाव में भगवान श्री श्री राधा गोविंद का भजन नहीं करेगा। और ऐसा व्यक्ति सारे ब्रह्मांड में सबसे भाग्यशाली व्यक्ति माना जाता है। तो इस प्रकार से राधा कुंड के बारे में कई पुराणों में भी चर्चा है। वैसे स्कंद पुराण में भी बताया जाता है कि जिस प्रकार से कृष्ण को राधा रानी प्रिय है, उतना ही राधा कुंड भी उनको प्रिय है। यथा राधा प्रिया विष्णु तस्याह कुंडम प्रियम तथा सर्वगोपेशु सैवैका विष्णोर अत्यंत वल्लभा। यथा राधा प्रिया विष्णु, जितनी प्रिय राधा है श्री विष्णु या श्री कृष्ण के लिए, तस्याह कुंडम प्रियम तथा, उसी तरह से राधा जी का कुंड जो है वो इतना ही प्रिय श्री कृष्ण को है। सर्व गोपेशु सैवैका, जो सारे गोपियों में से जो कि श्री कृष्ण की सेविकाएं हैं, उनमें से ये राधा जो है विष्णु अत्यंत वल्लभा, श्री कृष्ण की अति प्रिय हैं। तो क्योंकि राधा कुंड श्री राधा जी के लिए बहुत प्रिय है और श्री राधा जी श्री कृष्ण के लिए बहुत प्रिय है, इसका मतलब है कि राधा कुंड भी श्री कृष्ण के लिए बहुत प्रिय है। और यह बताया जाता है कि राधा कुंड का महत्व यह है कि ये कुंड या ये तालाब श्रीमती राधा रानी का निजी स्नान करने का स्थान है, उनका निजी कुंड है, और हर रोज श्रीमती राधा रानी यहां आकर स्नान करती हैं और अपने आप को फ्रेश कर लेती हैं। और राधा कुंड के तट पे राधा और कृष्ण के बीच में कई ऐसे लीलाएं हुए हैं, सुंदर और मधुर लीलाएं हुई हैं और होती रहती हैं। इसलिए बताया जाता है कि सारे ब्रज में राधा कुंड ये श्रीमती राधा रानी को सबसे प्रिय स्थान है, सबसे ऊंचा स्थान है। इसलिए आगे चल के श्रील रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, कृष्णस्योच्च ही प्रणय वसते ही प्रेयसीभ्यो पिराधा। भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रणय वसति ही जो भी प्रिय वस्तु हैं और प्रेयसीभ्यो या जो अनेक गोपियां हैं, इन सब में से सबसे प्रिय श्रीमती राधा रानी है। कुंडम च अस्य मुनिभिर अभिता ताद्रिक एव व्यधाई। तो राधा रानी का कुंड जो है वो भी श्री कृष्ण को उतना ही प्रिय है, और ये सारे ऋषि मुनियों का, संतों का निष्कर्ष है, उनका मत है। यत् प्रेष्ठैर अप्यलम असुलभम किम पुनर्भक्ति भाजाम। ये जो राधा कुंड है, प्रेष्ठैर बहुत प्रगतिशील भक्त, ऊंचे ऊंचे भक्तों को प्राप्त करना भी मुश्किल है। असुलभम, सुलभ मतलब आसान, असुलभ मतलब बहुत कठिन। तो बड़े बड़े भक्त जैसे कि नारद, शुक, शनक इत्यादि, इनको भी राधा कुंड की प्राप्ति होना बहुत कठिन है। तो फिर साधारण भक्तों की बात तो दूर है, लेकिन जो व्यक्ति किसी भाग्य से राधा कुंड के पास आता है, तत् प्रेमेदम सकृदपि सरहस्नातुर आविष्करोति। अगर वो सकृत एक बार भी, अपि सरह स्नातुर, स्नातुर मतलब स्नान करना, सरह मतलब उस सरस में, उस कुंड में, अगर कोई भाग्यशाली व्यक्ति एक बार भी इस राधा कुंड में स्नान कर लेता है तो उसे क्या लाभ मिलता है? प्रेम इदम, प्रेम इदम, शुद्ध राधा गोविंद के प्रति प्रेम प्राप्त हो जाता है, शुद्ध कृष्ण भक्त वो बन जाता है केवल स्नान करने मात्र से। लेकिन प्रभुपाद जी ने इसके बारे में बहुत कुछ बताया है। पहले तो उनके ग्रंथों में उन्होंने स्नान करने के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है, परंतु एक बार जब पहली बार श्रील प्रभुपाद अपने भक्तों को लेकर वृंदावन गए थे, जब राधा कुंड में उनके भक्त स्नान करने उतरे तो जैसे अन्य स्थानों में स्नान करते थे वैसे स्नान करने लगे, एक दूसरे के ऊपर पानी छिड़काने लगे, कूदने नाचने लगे, कोई ऊपर से छलांग मारने लगा पानी के अंदर। तो प्रभुपाद जी को क्रोध आया, उन्होंने कहा दूसरे स्थानों में ऐसा करना ठीक है लेकिन राधा कुंड में ऐसा नहीं, राधा कुंड में स्नान करने के लिए तुम लोग योग्य नहीं हो, चलो उठो यहां से। तो उसके बाद ऐसी इस्कॉन में प्रथा बनी कि किसी को राधा कुंड में जाना नहीं चाहिए, केवल तीन बूंद सर पे डालना चाहिए, क्योंकि इतना पावन स्थान है, हमारे पैर छूने नहीं, पैर से छूने नहीं चाहिए इसके जल को। लेकिन प्रभुपाद जी ने इसलिए कहा था क्योंकि भक्तों को सही भावना नहीं थी कि कैसे हमें राधा कुंड के सामने हमें आना चाहिए, कैसे प्रवेश करना चाहिए उसके पवित्र जल में। लेकिन प्रभुपाद जी के ग्रंथों में और सारे जो आचार्यों के ग्रंथों में ये बताया जाता है कि हमें स्नान करना चाहिए। स्वयं श्रील प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में बता रहे हैं कि हमें सदा राधा कुंड के तट में रहना चाहिए, और अगर सदा वहां उस राधा कुंड के तट पर रहकर श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा वहां स्नान करना चाहिए जल में, और अगर ज्यादा से ज्यादा नहीं कर पाए कम से कम एक बार भी तो कर लेना चाहिए, और एक बार करके अवश्य हम शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकेंगे। और इस प्रकार से जब हम स्नान करते हैं तो इस भावना से करना चाहिए कि ये साधारण जल नहीं है, ये साक्षात श्रीमती राधा रानी से अभिन्न है, राधा रानी का प्रेम स्वरूप है, राधा रानी का पिघला हुआ रूप है, तरलता हुआ रूप है ये। इसलिए बहुत ही ध्यान सावधानी से करना चाहिए। दो साल या कई साल पहले जब यात्रा निकली थी वृंदावन के लिए तो सभी भक्त यहां स्नान करने के लिए उतरे थे, इस्कॉन के भक्त भी आए थे, लेकिन बहुत सावधानी से, और केवल नीचे अपना डुबकी लगाकर तीन बार वहां मंत्रों को उच्चारण करके फिर बाहर निकलना। वैसे ही इस बहुलाष्टमी के दिवस पर अर्धरात्रि स्नान होता है, ये एकमात्र स्नान है सारे वैदिक संस्कृति में जो कि बीच रात को किया जाता है, और ये बताया जाता है, आदेश है कि अर्धरात्रि को ही करना चाहिए, रात के 12 बजे को, क्योंकि राधा कुंड का प्राकट्य रात को 12 बजे हुआ था, इसलिए उसी समय जाकर स्नान करना चाहिए। तो बहुलाष्टमी के रात्रि पर हम देखते हैं कि लाखों 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 लोग वहां आते हैं उस एक कुंड में स्नान करने के लिए, इतनी भीड़ होती है। सभी लोग इसका महत्व नहीं जानते और कई लोग एक भौतिक दृष्टि से राधा कुंड के पास आते हैं। हम ऐसे कई लौकी देखते हैं उसमें, जिसमें एक सिक्का रहता है, और हजार ऐसे कई सैकड़ों से लौकियां वहां रहती हैं। लौकियां नहीं, वो पंपकिन को क्या कहते हैं, भोपले, भोपले देखते हैं वहां पर, क्योंकि जिन पति पत्नियों को संतान नहीं होते हैं, पुत्र नहीं होते हैं, वो पुत्र की प्राप्ति के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन राधा कुंड के पास आना है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, न केवल संतान की प्राप्ति के लिए। लेकिन फिर भी ठीक है, जो भी है, राधा कुंड के जल में आते हैं, स्नान करते हैं। तो यहां पर रूप गोस्वामी बताते हैं कि जो भी एक बार सकृत अपि, एक बार भी राधा कुंड के जल में स्नान करेगा, उसे शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो इतने लाखों लोग स्नान करते हैं तो उनको शुद्ध कृष्ण प्रेम क्यों नहीं प्राप्त होता? इसके जवाब में यह बताया जा सकता है कि शास्त्रों में भी कई जगह यह बताया जाता है कि अगर आपने एक बार कृष्ण का नाम लिया तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे, आप शुद्ध कृष्ण भक्त बन जाएंगे। लेकिन हम सब कितने सालों से हरे कृष्ण करते आए हैं, वो शुद्ध कृष्ण प्रेम आता ही नहीं है और हृदय में इतने सारे अनर्थ पड़े रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि हम निरपराधी ढंग से जाप नहीं करते हैं। अपराध रहित जप जो होता है, तब जब हम जाप करते हैं तब हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है धीरे धीरे से। लेकिन हमारे जप में बहुत अपराध हम करते हैं, और कोई उपाय तो नहीं है, इसलिए हमें करते रहना चाहिए। लेकिन पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हरि नाम के प्रति जो अपराध हैं हम उन्हें नहीं करें। तो ठीक उसी प्रकार से, क्योंकि राधा कुंड में स्नान करते समय लोगों के हृदय में अपराध की भावना होती है, वो निरपराधी ढंग से स्नान नहीं करते हैं, इसलिए राधा कुंड में स्नान करने के बाद भी शुद्ध प्रेम का उदय हृदय में नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी अगर बहुत ही नम्र हृदय से, भक्ति भाव से प्रार्थना करते हुए श्री राधा कुंड को, श्रीमती राधा रानी को, श्री राधा गोविंद को, अगर हमने इस भावना से प्रवेश किया तो फिर अवश्य हमारे हृदय का परिवर्तन बहुत ही जल्द हो पाएगा। इसलिए बताया जाता है कि राधा कुंड का महत्व इतना है। श्री रूप गोस्वामी आगे बताते हैं कि राधा कुंड सारे ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा स्थान है, सारे तीर्थ स्थानों का शिरोमणि है। जितने भी सारे तीर्थ स्थान अनंत कोटि ब्रह्मांडों में हैं, उन तीर्थ स्थानों का सबसे पावन और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान ये राधा कुंड है। और रूप गोस्वामी बताते हैं, वैकुंठा जनित वरा मधिपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृंदारण्य मुदार पाणि रमणा तत्रापि गोवर्धनः राधा कुंडमिहापि गोकुलपतेः प्रेमामृता प्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकी नकः। रूप गोस्वामी बताते हैं, वैकुंठाज जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात्। ये भौतिक जगत को कुंठ कहते हैं क्योंकि ये तकलीफों से, कष्टों से भरा हुआ है, चिंता से भरा हुआ है। सदा समुद्विग्न धियाद असत ग्रहात्, क्योंकि लोग यहां असत को ग्रहण करते हैं, सदा चिंतित रहते हैं। तो इस भौतिक जगत को कुंठ कहते हैं क्योंकि हमेशा कष्टों से भरा हुआ है। लेकिन भगवान का धाम वो वैकुंठ है। वैकुंठ मतलब जहां कोई कुंठ नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई कष्ट नहीं, और वहां जब हरि कथा होती है कोई सोता नहीं है। क्योंकि वहां निद्रा थकावट है ही नहीं, वहां सभी लोग स्वाभाविक तौर से श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित होते हैं। आनंद ही आनंद है ये, और वहां पर अनंत लोकों में बहुत सारे भगवान के शुद्ध भक्त नारायण रूप में सेवा करते हैं, भगवान की नारायण रूप में सेवा करते हैं। तो भौतिक जगत से श्रेष्ठ है वैकुंठ, क्योंकि वहां भौतिक जगत का कोई कलमश नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, कोई अनर्थ नहीं है, शुद्ध स्थान है वो आध्यात्मिक। लेकिन रूप गोस्वामी बताते हैं कि वैकुंठाज जनितो वरा मधुपुरी, वैकुंठ से श्रेष्ठ है मथुरा। क्यों? क्योंकि भगवान श्री हरि का जन्म उस स्थान में हुआ था। तत्रापि रासोत्सवाद वृंदारण्यम, और मथुरा से श्रेष्ठ है वृंदारण्यम, वृंदावन। क्यों? क्योंकि वृंदावन के कई वनों में, जैसे कि वृंदावन खुद, तालवन, बहुलावन, मधुवन, भांडीरा वन इत्यादि, ऐसे द्वादश वन हैं, 12 वन हैं। तो इन सारे वनों में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारे सुंदर सुंदर मधुर लीलाएं किए, जो कि उन्होंने मथुरा में नहीं किए। मथुरा में केवल उनका जन्म हुआ और फिर वो वृंदावन में आए, इसलिए वृंदावन मथुरा से श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन आगे रूप गोस्वामी बताते हैं, वृंदारण्यम उदार पाणी रमणा तत्रापि गोवर्धनः, लेकिन वृंदावन से भी श्रेष्ठ है गोवर्धन। क्यों? क्योंकि उदार पाणी रमणात, भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ के छोटी उंगली पर उस पर्वत का स्पर्श किया था, उसको धारण किया था, और धारण करके सारे ब्रजवासियों को आश्रय दिया था। इंद्रदेव जो कि देवराज हैं, उनके घमंड को भंग कर दिया था, और इस तरह से सुंदर ये लीला करके भगवान ने गोवर्धन का महत्व सब जगह दिखलाया। इसके अलावा गोवर्धन के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने कई सुंदर लीलाएं किए, जैसे कि गायों को चरा के लेने जाते थे, उन्होंने अपने ग्वाल बाल मित्रों के संग भी बहुत सुंदर सख्य रस में लीलाएं किए, और गोपियों के संग में भी उन्होंने बहुत सारी लीलाएं गोवर्धन पे किए। इसीलिए वृंदावन से श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत माना जाता है। और आगे रूप गोस्वामी बताते हैं, राधा कुंडम इहापि गोकुलपते हैं प्रेम अमृत अप्लावनात, गोवर्धन से भी श्रेष्ठ है राधा कुंड। क्यों? क्योंकि राधा कुंड में एक बाढ़ है, एक फ्लड, बाढ़ समझते हैं फ्लड, और उस बाढ़ वो किस चीज का है? कृष्ण प्रेम के अमृत का बाढ़ है। गोकुलपति श्री कृष्ण, उनके पति जो प्रेम है, कृष्ण प्रेम, खास करके माधुर्य रस का प्रेम जो कृष्ण और गोपियों के बीच में है, उस शुद्ध प्रेम का बाढ़ वहां सदा बहता रहता है राधा कुंड में। इसलिए ये सारे ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा स्थान बताया जाता है, सारे तीर्थ स्थानों में से सबसे महत्वपूर्ण। तो भौतिक जगत से श्रेष्ठ वैकुंठ, वैकुंठ से श्रेष्ठ मथुरा, मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन, वृंदावन से श्रेष्ठ गोवर्धन, और गोवर्धन से भी श्रेष्ठ राधा कुंड। और इस प्रकार से वेदों में, पुराणों में, इतिहासों में राधा कुंड का वर्णन आता है। राधा कुंड के वर्णन के बारे में जब हम सुनने जाते हैं, तो राधा कुंड का आविर्भाव के बारे में भी अवश्य हमें सुनना चाहिए। राधा कुंड का आविर्भाव कृष्ण लीला में है, श्रीमद् भागवत में। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में लीला कर रहे थे, तो कंस ने एक असुर को भेजा जिसका नाम था अरिष्टासुर। कंस तो हर रोज कोई ना कोई असुर को वृंदावन में भेजते रहता था, क्योंकि वो चाहता था कि कृष्ण और बलराम की हत्या हो जाए। लेकिन बारंबार कृष्ण और बलराम इन असुरों का बड़े आसानी से वध करते थे, और कंस बड़ा हैरान हो जाता था कि ये जो दो छोटे बालक हैं, ये कैसे इतने शक्तिशाली बड़े बड़े असुरों का वध कर सकते हैं। और ये असुर जो थे कोई साधारण असुर या व्यक्ति नहीं थे, उनके अंदर सारे योग शक्तियां थी जिसके बल पर वो अपना रूप बदल सकते थे। और कभी कभी जैसे कि पूतना एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आई, वास्तव में वो तो राक्षसी थी। एक असुर आया, उसने शकट का एक रथ का रूप धारण किया, और एक तृणावर्त उसने एक भवंडर का रूप धारण किया, केशी ने घोड़े का रूप धारण किया, अघासुर ने एक मोटे अजगर का रूप धारण किया। तो उसी प्रकार से अरिष्टासुर नाम के इस असुर ने एक बैल का, वृषभ, इसका रूप धारण किया, और उस समय वृंदावन में प्रवेश किया जबकि सूर्यास्त होने वाला था और श्री कृष्ण सोच रहे थे कि अभी हमें रासलीला करना चाहिए। तो वृंदावन में बहुत रम्य समय था, सूर्यास्त होने का समय, बहुत मधुर हवा बह रही थी, वहां तुलसी और नाना प्रकार के वन के फूलों का सुगंध सब जगह आ रहा था। और उसी समय ये अरिष्टासुर अंदर आने लगा वृंदावन के। बड़ा भयानक दिखने में था वो, ऊंचा ऊंचा पहाड़ के समान। और ये बैल या जो वृषभ का रूप धारण किया था अरिष्टासुर ने, उसका जो ककुद है, मतलब पीठ के ऊपर जो पहाड़ की तरह जो होता है बैलों का, वो इतना ऊंचा था कि जो बादल है आकाश में, उन्होंने गलती की, उन्होंने सोचा कि ये कोई पहाड़ है, तो इस ककुद के इर्द गिर्द इसको घेरने लगे। और ये अरिष्टासुर बड़े जोर से गरजते हुए वृंदावन में प्रवेश करने लगा। अपने खुरों से वो जमीन को खोदते खोदते आ रहा था। कभी एक जगह खड़े रहता तो बस अपने नाक से ऐसे हवा निकालता, आवाज निकालता, और फिर गरजने लगता, और फिर अपने सिर को नीचे करके सींगों को सीधा करके खुरों को खोदते हुए जमीन में आक्रमण एक भावना से वृंदावन में प्रवेश करते आया। और जैसे वो सींग नीचे लगते थे, जो भी बांध वगैरह वहां थे सब टूट जाते। अरिष्टासुर के गरजने की आवाज सुनकर वहां जो भी गाभीन गाय थे या गर्भवती स्त्रियां थी, उनका गर्भपात हो गया। ऐसा भयंकर आवाज करके अरिष्टासुर प्रवेश करने लगा। उधर त्राही त्राही वृंदावन में मच गया। और जब वृंदावन के निवासी कष्ट में आते हैं तो क्या करते हैं, किसको पुकारते हैं? पुलिस को नहीं, सेना को नहीं, वकील को नहीं, कृष्णा। तो उन्होंने कहा, कृष्णा कृष्णा कहां है तुम, देखो हमें बचाओ, एक और असुर यहां पर आ गया। तो कृष्ण देख रहे थे आ गए, अरे ये कौन यहां मजा किरकिरा करने आ गया, फिर से असुर आ गया। तो कृष्ण भगवान ने कहा, मां भयिष्ट, डरो नहीं, डरो नहीं। और फिर कृष्ण भगवान अरिष्टासुर के सामने आए। सामने आकर क्रोधित होकर कृष्ण भगवान बोलने लगे, हे मूर्ख, तुम्हारी ये मजाल कि मेरे गांव वृंदावन में आके इस प्रकार से यहां ब्रजवासियों को तुम डरा रहे हो, क्या तुम नहीं जानते कि किस प्रकार से मैं तुम जैसे दुष्टों का दमन करने में दक्ष हूं, तो अभी तुम्हें मैं सबक सिखाता हूं। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने बड़े जोर से अपने भुजाओं का स्फोटन किया, जैसे कुश्ती करने वाले करते हैं, जैसे श्री कृष्ण ने यमुना के नदी में कालिया का दमन करते समय स्फोटन किया था अपने भुजाओं का। और स्फोटन की आवाज इतनी जोर से आई कि अरिष्टासुर भी घबरा गया, लेकिन क्रोध भी बढ़ गया। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, बड़े आराम से अपने ग्वालबाल मित्र के कंधों के ऊपर अपना हाथ रख दिया और हाथ में कमल पुष्प सूंघते हुए खड़े हो गए, अपने पैरों को त्रिभंग रूप में रखते हुए, और ललकारते हुए कि आओ अरिष्टासुर, मैं तुम्हारा वध करूंगा। अरिष्टासुर ने देखा तो बहुत क्रोध आया कि मैं इतना शक्तिशाली पहाड़ जैसा और ये छोटा सा बालक देखो कैसे खड़े हो रहा है मेरे सामने और मुझे ललकार रहा है, तो अपने सींगों को सीधा करते हुए और सीधे कृष्ण भगवान की ओर सींगों को लेकर आया और अपनी आंखों से लाल लाल बड़े बड़े आंख करके श्री कृष्ण की ओर देख रहा था। तो उस समय श्री कृष्ण ने क्या किया, आसानी से अरिष्टासुर के सींगों को पकड़ दिया और 18 कदम दूर फेंक दिया। जब अरिष्टासुर ऐसे गिर गया 18 कदम दूर, तो क्रोध और बढ़ गया, पसीना छूट गया और कांपते हुए क्रोध से फिर से आक्रमण करने लगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, फिर से सींगों को पकड़ दिया और जैसे जिस गति से आक्रमण कर रहा था उस गति को पूर्ण विराम कर डाला, बिल्कुल वहीं कभी रुक गया अरिष्टासुर। देखिए इतने तेजी से आ रहा था, मान लीजिए कोई रेलगाड़ी आ रही है और आप रेलगाड़ी के सामने खड़े हो गए, केवल हाथ मार के आप अचानक उसी स्थान पर रेलगाड़ी को रोक सकते हैं? तो ये अरिष्टासुर तो कई रेलगाड़ियों की तरह था और कृष्ण भगवान सामने आए, सीधा पूर्ण विराम, सीधा पकड़ लिया अरिष्टासुर को और पकड़ के क्या किया, फुटबॉल के खिलाड़ी की तरह से एक लात मार दी अरिष्टासुर को और अरिष्टासुर जमीन पर गिर गया। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर को उठाया और ऐसे जमीन पर पीटने लगे जैसे हम गीले कपड़े को धोते समय पीटते हैं, ऐसे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। और फिर इतना पीटने लगे कि अरिष्टासुर के मुख से, कानों से, आंखों से, सब जगह से खून बहने लगा, पसीना पसीना मलमूत्र भी बहने लगा और फिर उसने अपने प्राण त्याग दिए। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने एक सींग बाहर निकाला और उसी सींग को तलवार की तरह प्रयोग करके वो उसे मार दिया अरिष्टासुर को, और इस प्रकार से अरिष्टासुर का वध हो गया। और फिर सारे देवी देवता भी प्रसन्न हुए, ब्रजवासी प्रसन्न हुए, वाहवाकार करने लगे, साधु साधु बहुत अच्छा कृष्ण बहुत अच्छा। तो जब अरिष्टासुर का वध कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने, तो राधा रानी गोपियों के पास आए, थोड़ा बताना चाहिए ना कि देखो मैंने क्या काम किया है, तो वहां पर बताना है कि देखो कितने बड़े असुर का वध मैंने किया है। तो उस समय गोपियों ने कहा, अरे ची ची ची, हमको छुओ नहीं। अरे क्यों, तुमने गो हत्या की है, गोवंश में एक बैल की हत्या की तुमने, इसलिए अभी तुम पाप से स्पर्श किया है तुमने, अभी हमें स्पर्श नहीं करो। अरे लेकिन ये तो इतना बड़ा असुर था, पाप तो क्या, मैंने जगत का कल्याण किया ऐसे बड़े असुर को मारकर। तो राधा रानी ने और गोपियों ने कहा, फिर भी वो एक वृषभ है, बैल है, गोवंश है, इसलिए तुमने पाप का स्पर्श किया है, तुम पापी हो गए हो, इसलिए यहां मत आना, तुम्हें प्रायश्चित करना होगा जिस तरह की इंद्रदेव ने भी वृत्रासुर नाम के ब्राह्मण का की हत्या करके प्रायश्चित किया था। वृत्रासुर वास्तव में अपने पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम के राजा थे, उनको शाप मिला था पार्वती देवी के द्वारा, जिसकी वजह से उनको एक असुर का शरीर प्राप्त हुआ वृत्रासुर, लेकिन ब्राह्मण कुल के, और इंद्रदेव ने वृत्रासुर की हत्या कर दी थी। क्योंकि वो ब्राह्मण थे इसलिए उनको प्रायश्चित करना पड़ा, नाना प्रकार के नाना जो तीर्थ स्थान है उनमें जाकर अपने आप को शुद्ध करना पड़ा। तो गोपियों ने श्री कृष्ण से कहा कि तुम्हें भी इस प्रकार से तीर्थ यात्रा करके सारे तीन भुवनों में, भूलोक, भुवनलोक, स्वर्गलोक, तीनों लोकों में जितने भी सारे तीर्थ स्थान हैं उनमें से जाकर तुम्हें स्नान करना होगा, शुद्ध करना होगा अपने आप को, फिर हमारे पास आना। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, अरे मैं भगवान हूं, मैं इधर उधर जाऊं, ये कैसे हो सकता है? तो फिर श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा, मैं किधर नहीं जाने वाला, लेकिन मेरी शक्ति देखो, मैं सारे तीर्थ स्थानों को यहां बुलाऊंगा, मेरे पास सारे ब्रह्मांड के तीर्थ स्थान यहां आएंगे, फिर मैं तुम्हारे सामने इनमें स्नान करूंगा, अब देखो मेरा कमाल। और फिर श्री कृष्ण बोलने लगे, हे भोगवती जो कि पाताल लोक से आई हैं, कृपा करके आइए ऊपर। और इस प्रकार से श्री कृष्ण ने सारे तीर्थ स्थानों को बुलाया और जैसे ही बुलाया तो सारे तीर्थ स्थान अपने मूर्तिमान स्वरूप में उपस्थित हुए श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर, क्या आदेश है आपका? तो श्री कृष्ण ने कहा कि तैरते यहां आपका प्रवाह यहां हो जाने दो और मैं आपके अंदर जल में स्नान करना चाहता हूं। तो उधर एक कुंड बन गया जिसका नाम हुआ श्याम कुंड। भगवान श्री कृष्ण उस समय अपने एड़ियों से, मतलब अपने पैरों के तलवों से एक छोटा सा कुंड बना दिया, एक स्थान बना दिया, खड्डा खोद दिया, और फिर उस खड्डे में ये सारे जो तीर्थ स्थानों के जल है वो वहां बहने लगे। फिर श्री कृष्ण ने अच्छी तरह से स्नान किया, स्नान करके आके कहने लगे, देखो अभी हम पूरी तरह से शुद्ध हुए हैं, अब देखा हमारा कमाल, अभी आगे हमें कुछ ऐसे ललकार नहीं, कम से कम मैं तो शुद्ध हो गया, लेकिन तुम गोपियां आज तक तुमने कोई पुण्य किया है जन्म में? तो राधा रानी को लगा, रहे मेरे से ऐसा बोल रहे हैं कृष्ण, मैं दिखाती हूं। तो राधा रानी कहने लगे, मैं दिखाती हूं कि तुमने जो कुंड बनाया है उससे अच्छा कुंड मैं सारे यहां पर बना के रखूंगी। तो कृष्ण ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे कुंड से जल ले लो। नहीं नहीं, तुम्हारे कुंड के जल की कोई आवश्यकता नहीं है, और मैं और मेरी साथियां सखियां जो हैं हम यहां पर खड्डा खोदेंगी। तो वहां पर पास में श्याम कुंड के पास में ही अरिष्टासुर के खुरों से खोदे हुए छोटा सा जो खड्डा था, फिर वहां राधा रानी और गोपियां गईं और खोदने लगे, अपने जो गीला जो गीली मिट्टी थी उसको उखाड़ उसको निकालने लगे। और आचार्य अन्य शास्त्र में यह भी बताया है कि राधा रानी और गोपियों ने उनके कंकड़ निकाले, उनकी चूड़ियां निकाली, और चूड़ियां से वो निकालते गए, इसलिए राधा कुंड को कभी कंकन कुंड भी कहा जाता है। तो वैसा खड्डा खोद दिया, और फिर राधा रानी कहने लगी, हम सारी गोपियां जाकर मानसी गंगा में जाएंगी, और मानसी गंगा में लाखों लाखों मटकों में हम जल लाएंगे और इस कुंड को हम बनाएंगे, भरेंगे। तो उस समय श्री कृष्ण ने इशारा किया तीर्थ स्थानों से, तो सारे तीर्थ स्थान वहां पर आए। तो उस समय जब तीर्थ स्थान आए तो उन्होंने कहा, राधा रानी के सामने सब आए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तो राधा रानी ने कहा कि मैं नहीं विश्वास करती कि सारे तीर्थ स्थान यहां पर आए हैं। तो कृष्ण भगवान ने इशारा किया सारे तीर्थ स्थानों को, तो एक एक करके सब आ गए। तो एक आए, कहने लगे, मैं नमकीन पानी का सागर हूं, आपके सामने मैं वंदना करता हूं। फिर और एक तीर्थ स्थान आया, मैं सरस्वती नदी हूं। और एक आए, मैं ताम्रपर्णी नदी हूं। और एक आए, मैं शोण नदी हूं, मैं कावेरी हूं, मैं गंगा हूं, मैं सरस यमुना हूं। इस प्रकार के सारे जो तीर्थ स्थान है एक के बाद एक आने लगे, और फिर वो तीर्थ स्थान जो है वो राधा रानी से कहने लगे, आपका स्थान कोई नहीं समझ सकता, आपकी जो महिमा है कोई समझ नहीं सकता, यहां तक कि ब्रह्मा जी, शिव जी और नारद जी भी नहीं समझ सकते हैं, लक्ष्मी जी भी नहीं समझ सकते हैं, केवल हमारे स्वामी श्री कृष्ण आपकी महिमा को समझ सकते हैं। और यही श्री कृष्ण आपकी एक मुस्कान को देखकर इतने प्रसन्न हो जाते हैं जैसे कि अब हुए हैं, और वो तो हमेशा आपके चरण कमलों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और किसी भी प्रकार से आपकी सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं, केवल आपकी कृपा कटाक्ष के लिए, मतलब आपके कृपा दृष्टि के लिए हम सब अपेक्षा करते हैं, हम आशा करते हैं हमारा जीवन इस प्रकार से सफल हो जाएगा, केवल हमारी सेवा को आप स्वीकार कीजिए, हमारे जीवन को धन्य बनाइए। तो राधा रानी ने कहा कि ठीक है, क्या इच्छा है तुम्हारी, क्या चाहते हो? तो तीर्थ स्थानों ने कहा कि हमारे जल को आपके कुंड में आने दीजिए ताकि हमें भी ये सेवा हो जाए। तो राधा रानी ने गोपियों की ओर देखा, गोपियों ने कहा ठीक है चलो। तो सारा जो जल था, अनेक तीर्थ स्थानों का जल जो श्याम कुंड में भरा हुआ था वो बढ़ गया, और जो बीच का जो दीवार था वो तोड़कर श्याम कुंड का जल यहां आ गया और वो राधा कुंड बना। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राधा रानी, अब ये कुंड मेरे लिए बहुत प्रिय होगा, मैं हमेशा जब भी यहां आऊंगा तुम्हारे कुंड में स्नान करूंगा, और मैं आशीर्वाद दूंगा कि जो भी कोई तुम्हारे कुंड में स्नान करेगा उसे तुम्हारे चरण कमलों के प्रति प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो राधा रानी ने कहा, हे कृष्ण, मैं भी तुम्हारे श्याम कुंड में स्नान करूंगी, और जो भी व्यक्ति यहां श्याम कुंड में स्नान करेगा मैं वरदान देती हूं कि उसे तुम्हारे चरण कमलों के प्रति शुद्ध प्रेम प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से श्याम कुंड और राधा कुंड दोनों का आविर्भाव हो गया। इस प्रकार से हमें जानना चाहिए कि राधा कुंड और श्रीमती राधा रानी में कोई अंतर नहीं है और श्याम कुंड और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों श्याम कुंड और राधा कुंड श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के तरलते हुए रूप हैं। उनकी कृपा है पिघलते हुए या तरलते हुए रूप में। राधा रानी ने अपनी कृपा इस कलयुग में राधा कुंड के माध्यम से दिया है। जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने अपनी कृपा कलयुग में हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से दिया है, उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी ने अपनी कृपा कलयुग के लोगों के लिए इस राधा कुंड के माध्यम से दिया है। और दोनों को प्रकट करने के लिए माध्यम भगवान श्री कृष्ण के बड़े औदार्य रूप चैतन्य महाप्रभु हुए हैं। श्री कृष्ण की कृपा को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन का उद्घाटन किया और श्रीमती राधा रानी की कृपा सबके ऊपर देने के लिए जब वो वृंदावन में गए थे तीर्थ यात्रा के लिए संन्यास लेने के बाद, तो उन्होंने ढूंढ निकाला कि राधा कुंड कहां है। उस समय वो अरित ग्राम कहलाया करता था। अरित ग्राम मतलब अपभ्रंश है अरिष्ट का, अरिष्ट असुर के बाद में ये नाम हुआ, अरिष्ट ग्राम था, अरित ग्राम हो गया। और वहां पर एक खेत में केवल 12 फुट बाय 12 फुट का एक छोटा सा तालाब जैसा था जिसमें थोड़ा बहुत पानी था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि ये राधा कुंड है। और फिर वहां उन्होंने स्नान किया और फिर 6 गोस्वामियों को उन्होंने आदेश दिया कि ब्रजभूमि के जो भी सारे तीर्थ स्थान हैं आप उनको प्रकाशित करना, प्रकट करना सारे जगत के कल्याण के लिए। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से हमें राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है, कृष्ण भगवान की कृपा हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से और राधा रानी की कृपा राधा कुंड के माध्यम से। जब श्रीमती राधा रानी श्याम कुंड को देखती हैं तो उन्हें कृष्ण दिखाई पड़ता है, क्योंकि कृष्ण में और श्याम कुंड में अंतर नहीं है। और जब श्री कृष्ण राधा कुंड को देखते हैं तो वो साक्षात श्रीमती राधा रानी को देखते हैं, क्योंकि राधा कुंड में और श्रीमती राधा रानी में कोई अंतर नहीं है। इसी प्रकार से हम जब राधा कुंड और श्याम कुंड के पास जाते हैं हमें भी राधा कृष्ण दिखाई पड़ने चाहिए। हमें भी समझना चाहिए कि ये केवल जल नहीं है, साक्षात प्रत्यक्ष ये राधा और कृष्ण है। और इस भावना से हमें जाना चाहिए। बहुलाष्टमी के समय यहां स्नान करने का बहुत महत्व बताया जाता है और इस दिवस को बहुलाष्टमी या कृष्णाष्टमी या राधा कुंडाष्टमी भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी अष्टमी की तिथि पर प्रकट हुए थे, श्रीमती राधा रानी भी अष्टमी की तिथि पर प्रकट हुई थी और राधा कुंड भी अष्टमी की तिथि पर ही प्रकट हुआ। और इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण बीच रात 12 बजे रात को प्रकट हुए, राधा कुंड भी बीच रात के 12 बजे ही प्रकट हुई थी। राधा कुंड कार्तिक महीने में प्रकट हुई, मतलब कार्तिक ये बहुत महत्वपूर्ण महीना इसलिए है कि यह श्रीमती राधा रानी का महीना है, इसलिए राधा रानी को कार्तिक देवी कहा गया है। इस महीने में राधा कृष्ण की सेवा करने से हमें श्रीमती राधा रानी की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है और राधा रानी की कृपा इसी महीने में कार्तिक महीने में उनके कुंड के माध्यम से हम सबके भलाई के लिए, हमारे उद्धार के लिए प्रकट हुआ है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि राधा कुंड कितना महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। आगे चल के चैतन्य महाप्रभु के बाद वहां रघुनाथ दास गोस्वामी जब आए थे तो उन्होंने वहां रहना आरंभ किया। वैसे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने रघुनाथ दास गोस्वामी को राधा कुंड का महंत बनाया। और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी जब एक दिन सोच रहे थे कि हमें यहां पर कुछ अच्छा कुंड बनाना चाहिए, तो जैसे वो भजन कर रहे थे ये विचार मन में आया, पैसे की बात मन में आई, तो उन्होंने सोचा अरे रे रे मेरा भजन भ्रष्ट कर दिया मैंने, मैं कितना पापी हूं, भजन करते समय हरि नाम लेते समय मैं पैसे के बारे में सोच रहा था। तो फिर से वो विचार को भुलाकर फिर से भजन करने लगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो सबके हृदय में विराजमान है, तो उस समय एक व्यापारी बद्रीनाथ में बद्री विशाल की पूजा करने के लिए गए थे, बद्री नारायण की। तो रात में उस व्यापारी के सपने में भगवान आए, बद्री विशाल आए और कहने लगे जो पैसा यहां खर्च करने वाले हो यहां मत खर्च करो, वृंदावन में जाओ, वहां पर अरिट ग्राम नाम के ग्राम में जाओ, वहां पे रघुनाथ दास गोस्वामी नाम के सन्यासी बैठे हैं, उनको ये दान कर दो। फिर वो व्यक्ति वहां पर आए और रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा कि मुझे ऐसे ऐसे सपना आया था। और रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने जब सुना तो आश्चर्यचकित हो गए और उनको समझ में आया कि ये राधा रानी की। तो इस प्रकार से बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को यह पद सौंप दिया और फिर आगे चल के जीव गोस्वामी से महंतों की परंपरा आज तक चलती आ रही है। इस प्रकार से राधा कुंड ये हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और ये सुंदर लीला सुनकर हम जान सकते हैं कि राधा कुंड में स्नान करना, राधा कुंड की महिमा के बारे में श्रवण करना, ये हमारे भक्ति के लिए बहुत ही लाभदायक है।